أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللہ تعالیٰ آپ کو آج کا دن مبارک کرے اور دل دماغ ہمارے اس پارے کے فائدے کو لینے والے بن جائیں اور اس کی خیر ہم سب اپنے گھروں میں سمیٹیں. آئیے شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. دورہ قرآن 2025 DQ 2025. اس میں سے آج ہم پارہ نمبر 25 کریں گے جس میں قیامت کے آنے کے دلائل کے ساتھ یہ بتا دیا کہ ضروری نہیں کہ جو چیز اپنی آنکھوں سے تم دیکھ نہ سکو وہ ہو ہی نہ. مکہ والوں کا بہت بڑا اعتراض یہ تھا کہ اللہ نظر کیوں نہیں آتا, اگر قیامت آنی ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتی. تو بالکل شروع سے ہی ہم دیکھیں گے کہ کائنات کی کچھ چیزیں جس میں شگوفوں کا پھوٹنا اور پھلوں کا اپنے غلافوں میں سے نکلنا, یہ بتا دیا کہ جو چیز تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے پھر اپنے وقت پہ وہ ظاہر کر دی جاتی ہے. تو لہٰذا انکار برائے انکار کی عادت چھوڑ دو اور حقیقت کے پیچھے لگ جاؤ. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ پیاری ہستی جس کو اللہ نے اس کتاب کے لیے منتخب کیا, جنہوں نے اپنے سینہ اتھر پر اس کتاب کو لیا اور پھر 23 سال کے عرصے میں اس کو اخذ کرتے کرتے ساتھ ساتھ پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا. آئیے محبت سے ان کے لیے درود پڑھتے ہیں. اور یہ آپ کا میرا اپنا اپنا تعلق ہے, یہ کوئی رسم نہیں, یہ کوئی پارے کے شروع میں ہر روز ایک کرنے والا کام نہیں, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو محسوس کرنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور ہم اپنے پیارے نبی پر درود کیوں نہ بھیجیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سراج منیرہ بنا کر پیش کیا. اس پارے کے ناطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا چراغ کیسے ہیں کہ انسانیت بھٹک رہی ہے, انسانیت کو نہیں سمجھ کہ میرے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں. ہر ایک اپنے اپنے عزم پہ خوش ہے, کسی نے کمیونزم کو اپنایا, کسی نے سوشلزم کو اپنایا, اور اسی طرح سے کوئی ڈیموکریسی کے گھن گاتا ہوا دکھتا ہے. لیکن اس بارے میں ہم دیکھیں گے کہ شریعت کی باتیں ہیں, شریعت کا نفاذ, شریعت کے تقاضے اور پھر اس کے ثمرات. اس بارے کا مین تھیم کیا ہے کہ ہم شریعت کو اگر اپنی ذات سے لے کر اپنے گھروں سے لے کر پھر اپنے معاشرے اور باقی چیزوں پہ لیں تو مرکزی مضمون نفاذ شریعت, ضرورت, تقاضے اور ثمرات. خاص طور پہ یہ مضمون آئے گا سورت شورا میں. لیکن اس وقت ایک جملہ لکھیے, رمضان کو سلف صالحین مدرسۃ التقویٰ کہتے تھے. آپ اور میں رمضان کے مقاصد کو جانتے ہوئے دیکھ چکے کہ اس رمضان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا بات لگا دی, لعلکم تتقون. تو آپ کا میرا یہ رمضان کیسا گزر رہا ہے, ہمارے روزے کیسے گزر رہے ہیں, ہمارا دور قرآن کیسا گزر رہا ہے, اور اب آگے جا کر پھر آخری عشرہ کیسا گزرے گا یا کسی کا کیسا گزر رہا ہے. ان سب سے تقویٰ لیجیے گا. آپ اور میں جتنا زیادہ اس چیز کو لیتے رہیں گے ہمیں اس سے فائدہ ہوگا. اگر ہم آج کے پارے کو پچھلے پارے کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو اس پارے کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت کچھ رکھا ہے. اب آگے آگے آپ دیکھتے ہی جائیں گے کہ پاروں کے اندر ایک سے زائد صورت ہوگی اور ہر صورت جو ہے اس کا ایک اپنا تھیم ہوتا ہے, ایک اپنی چیز ہوتی ہے. لیکن اس پارے کے اندر پچھلے پارے کے ساتھ جوڑیں تو 24ویں پارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ انسان جب استقامت کے درجے پہ فائز رہتا ہے تو بالآخر پھر اس کو مقام صدیقیت مل ہی جاتا ہے. ہر ایک اپنے اپنے حساب سے جو اس کی شاخلہ ہے, جو اس کی خوبی ہے, اس کے مطابق کام کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہی رہے گا. آئیے ذرا پارہ نمبر 25 کی جھلکیاں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہم لوگ کیا پڑھنے والے ہیں اور اس میں ہمیں کیا سمجھ آئے گا. تو اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ علم غیب کو جاننے والا ہے. यानी गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी और के पास नहीं। फिर उसके बाद इंसान की फितरत की बात है, और वो क्या है कि खुशी के मौके पे अकड़ता और गम के मामले में डिप्रेशन में चला जाता। फिर कुदरत और तौहीद बारी ताला है, और उसके बाद फिर सूरत शूरा शुरू होती है, जिसमें मुसलमानों को एक पूरा कंप्लीट वे ऑफ लिविंग बताया जा रहा है। पारे का थीम भी इसी के साथ है हमारा, शूरा, मशवरा, इज्तमाई मामलात में मशवरे की अहमियत। और सूरत शूरा उन 7 सूरतों में से एक है कि जो हामीम से शुरू होती हैं, और ये तीसरी सूरत है उसमें। फिर इस सूरत में हम देखेंगे मलाइका की वजह से आसमान का फटना, फिर रिश्तेदारियों का लिहाज करने की बात होगी 23 आयत में, फिर मुसीबतें क्यों आती हैं ये बात आएगी इसमें, आखरत में अजर के मुस्तहकीन की कुछ सिफात हैं इसमें, और खालिक सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ताला का इंसान से हम कलाम होने का तरीका वही, लिख लीजिए इस बारे की खूबी, वही की जो मुमकिन सूरतें थीं अल्लाह के नबी की पूरी ज़िंदगी में, कभी एक तौर पे कभी दूसरे तौर पे वही आई, तो उसका तذकरा भी पारा नंबर 25 में है। और हम इंशाल्लाह इसको आयत नंबर 51 और उसकी ऑनवर्ड आयतों से देखेंगे कि वही के मुख्तलिफ तरीके। फिर उसके बाद सूरह ज़ुख़रुफ़ पढ़ेंगे हम इस बारे में। ज़ुख़रुफ़ सोने को कहते हैं, चूँकि इस सूरत में सोने का जिक्र है, सोने का नहीं सोने का, औरतें तो खुश हो जाती हैं ना सोने के नाम पे, और सोने के नाम पे भी खुश हो जाते हैं कुछ लोग, हाँ नींद छोड़नी पड़ती है अल्लाह के लिए। तो खैर, इसमें सोने का जिक्र है, गोल्ड का, बनाओ सिंगार, ज़ुख़रुफ़ इसी को कहते हैं, तो इसीलिए इसको ज़ुख़रुफ़ कहा जाता है। और इस सूरत में मुशरिकीन ने मक्का के मुख्तलिफ एतराज़ात का जवाब दिया जा रहा है, और उनकी तरदीद की जा रही है, और फिर हज़रत इब्राहीम, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम का तذकरा करके उनको बताया जा रहा है कि मोहम्मद अरबी को सताना छोड़ दो, ये उसी नबूवत के सिलसिले की कड़ी हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए चुना। फिर सूरह ज़ुख़रुफ़ के शुरू में ही कुरान पाक के वाज़े होने की बात है कि कुरान कोई मुबहम नहीं, कोई ढकी छुपी बातें नहीं, वल किताबिल मुबीन। फिर मुशरिकीन की काबिले नफ़रत सोच का तذकरा, यानी ख़ुद तो बेटी के नाम पे परेशान होने लगे और अल्लाह के लिए बेटियां मुकरर करता है। फिर इसी तरह उनके कुछ दावों की तरदीद आ रही है, उनकी गलत सोच का रद्द पेश किया जा रहा है, और फिर आयत नंबर 34 में जिक्र इलाही को छोड़ने का नुकसान, शैतान मुकरर हो जाएगा, वमैयाशन जिक्र रहमान नुकैद लहू शैतानन फहु लहू करीन। कुरान से आपका ताल्लुक़ है तो ये जो शॉर्ट सेशन शुरू में 5-6 मिनट के होते हैं ना, इससे आपको पूरे कुरान की आयतें भी याद हो जाती हैं कि चीदा चीदा मजामीन का है। बाद में भी अगर आप कभी ढूंढना चाहें ना कि कौन सी आयत किस बारे में थी, तो ये आप सिर्फ शुरू का हिस्सा सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हासिल होगा। फिर इसके बाद साबिक अम्बिया से कुछ बातें करते हुए हज़रत मूसा का किस्सा है, कुफार के तराजात हैं, और फिर अल्लाह ताला का बेटा बनाने के अकीदे की तरदीद है। उसके बाद सूरत दुखान आएगी इसी पारे में। दुखान अरबी में धुएं को कहते हैं। इस सूरत में उसका तذकरा है, मक्की सूरत है, तौहीद रिसालत और आखरत को साबित किया जा रहा है, और मुशरिकीने मक्का पे जो कहत मुसल्लत किया गया था उसका तذकरा। फिर लैलतुल मुबारका से क्या मुराद है, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। फिर दुखान से क्या मुराद है, फिर इसमें फ़िरौन की तबाही का तذकरा है, अहले जहन्नुम का खाना क्या होगा, अहले जन्नत के लिए इनामात क्या होंगे, और फिर इसके बाद सूरत जासिया, घुटनों के बल गिरना। इस सूरत में क़यामत की हौलनाकियाँ हैं, क़यामत के दिन लोग खौफ की वजह से घुटनों के बल गिरे होंगे, इसी वजह से फिर इसको सूरत जासिया कहा जाता है। उसमें भी तौहीद और कुदरत बारी ताला के दलाइल हैं, फिर उसमें भी शरीयत का तारुफ है और बहुत कुछ। असल बात यह कि हम ये लेने वाले बन जाएं, जितना ज़्यादा हम दिल खोल कर सुन रहे हैं और जितना इस पे तवज्जो दे रहे हैं, नोट्स ले रहे हैं, बड़े मुख्तात होकर बैठते हैं कि ये वक्त मेरा एतिकाफ़ का वक्त है, ये मेरा अल्लाह का वक्त है, ये मेरा अपना वक्त है, उतना ज़्यादा लेंगे। चलते फिरते कानों में बात तो पड़ जाती है, लेकिन याद रखिए दिल तक नहीं पहुँचती। तो इंशाल्लाह इस पूरे पारे को जब हम जज्ब करेंगे तो हमें निशानियों का भी बहुत ज़िक्र मिलेगा, ख़ास तौर पे ये शुरू में ही हम देखेंगे कि हामीम सजदा की जो इब्तदाई आयात हैं, सनुरीहिम आयातिना फ़िल आफ़ाक़ व फ़ी अनफ़ुसिहिम, यानी हमारे अपने नफ्सों में भी अल्लाह के वजूद की निशानी है और कायनात में हैं, और कुरान की आयतें तो हमें मिल ही रही हैं। और फिर इसी तरह से इस बारे में इख्तलाफ हो जाने की सूरत में अल्लाह की किताब की तरफ रजू करने का हुक्म है। और शरीयत की जो बातें हैं तो वो भी याद रखिएगा, तमाम अंबिया को तौहीद के कायम करने का हुक्म दिया था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए शरीयत को बिलफेल अप्लाई किया गया, आपके दौर में, आपके बाद खुलफाए राशिदीन के दौर में, और उसके बाद भी ये शरीयत नाफिज रही। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा को न जाने क्या हो गया है, किसने इनके दिलों में ये बात डाल दी कि शरीयत नाफिज हो गई तो हम तरक्की नहीं कर सकेंगे, हमारे साथ ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो आप देखिएगा कि जब शहवत को रखेंगे, आप लिखिए शहवत बमुकाबला शरीयत, ये शहवत को अगर आप दबा लें तो शरीयत खुद ब खुद अच्छी लगेगी। इसी बारे में हम मन का न यूरीद हर सल आखिरा की बात पढ़ेंगे कि ये दुनिया आखिरत की खेती है, इधर जो बीज डालोगे ना कल वहाँ उधर फल मिलेगा। अगर यहाँ बीज ही ख्वाहिशों के डाले तो वहाँ क्या मिलेगा, ख्वाहिशात वाले तो गई में डाले जाएंगे। पीछे पढ़कर आए हम सूरत मरियम में भी और भी जगह पे। तो लिहाजा आज उम्मत मुस्लिमा को ये मैसेज मिलेगा इस बारे में कि अहले ईमान की अखलाकियात अगर दुरुस्त हो जाएं, अफ़ो दरगुजर करना शुरू हो गए, साथ ही साथ बदला भी ले लेंगे। यह सारा मज़मून इंशाल्लाह हम आयत 39, 40, 41 में पढ़ेंगे सूरत शुरा की। और बात यही है कि जब बंदे का किरदार इस तरह का होने लगे कि जिसमें अल्लाह सुबहाना ताला सब चीज़ों को जो पेश करता है वो सबसे ऊपर कर दे, और जो बाप दादा के तौर तरीके, उनकी अंधी तकलीद ये पीछे हो, दुनिया पीछे हो जाए, तो अल्लाह ताला फिर ऐसी कौम को ज़रूर अरूज देता है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको हम मोहम्मद अरबी के नाम से जानते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने चुना था, तो आइए ज़रा देखते हैं कि आज के दौर के अंधेरे और उस दौर के अंधेरे दोनों का तकाबुल कर लें, दोनों के अदवार में जो हालात फ़र्क थे उसको देख लीजिए, असबाब और रिसोर्सेज को देख लीजिए। तो जब नबी ने ज़ीरो से शुरू करके 23 साल के अरसे में आप शरीयत का निफाज करने के काबिल हो गए, बल्कि फिर आपके बाद आपके सहाबा ने, आपके साथियों ने ये सब कुछ कर लिया, तो क्या आपके मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है? आप और मैं इनफरादी तौर पर क्या शरीयत नाफिज करें अपने इस 5 से 6 फुट जिस्म पे, फिर अपने बच्चों पे, फिर अपने घर पे? इसी तरह कुल्लुकुम रायन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयति ही पे अमल करते हुए, जब हर घराना अपने आप को शरीयत के मुताबिक करेगा, चलना फिरना, खाना पीना, सोना जागना, कमाना, बच्चों की तरबियत, तो एक घर में शरीयत नाफिज हो गई। फिर इसी को देखकर एक ख़ानदान में ये बात जाएगी, चचा मामू पुप्पो सबके घर में एक ही शरीयत होगी, और उसके बाद आप देखेंगे कि वही तब्दीली आएगी जो नबी सल्लम के दौर में आई थी। अगर हम देखें तो हमने मोहम्मद अरबी के सेशंस में पीछे क्या देखा था कि अल्लाह के नबी सल्लम की मुखालफतें पूरे जोश पे थी, और लोग आपके चचा के पास बार बार आकर आपकी शिकायतें लगा रहे हैं, आज ये हो गया, आज वो हो गया, ये कर दिया, लेकिन अल्लाह के नबी ने हिम्मत नहीं हारी। आप उनकी दिल फाड़ने वाली बातें भी सुनते रहे, लेकिन अपने मकसद की सच्चाई थी तो इसलिए आप बैठे रहे। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहस और मुबाहसे से बचने वाले थे, लेकिन एक मौके पे जब कुरैश के सरदार मक्का में बैठे थे तो उन्होंने बुलाकर कहा कि बताओ भाई तुम क्या कहते हो, तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि मैं तुम्हें यही दावत देता हूँ, अल्लाह एक है, उसी को मान जाओ। लेकिन उन्होंने अल्लाह के नबी को क्या जवाब दिया, कहने लगे हम तो जानते नहीं कि अरब में कोई ऐसा आदमी हो जिसने तुम्हारी तरह अपनी कौम को तंग किया हो। नाउज़ु बिल्लाह, ज़रा सोचिए, आपको भी कोई कहता है तंग कर दिया तुमने मुझे? कहने लगे तुमने हमारे दीन में ऐब निकाला, हमारे देवताओं को बुरा भला कहा, हमारे बाप दादा पर कीचड़ उछाली, यही क्या पूरी कौम को तितर बितर करके रख दिया। आज भी याद रखिए, जब कोई कुरान पढ़ के अमल करने लगेगा ना, उसको ये ताना ज़रूर मिलेगा, तुमने ख़ानदान में तफरका डाल दिया, तुमने भाई को भाई से अलग कर दिया, अब ये क्या निकाब निकाब लगाए हो। तो याद रखिए, महरम और गैर महरम का फ़र्क शरीयत में है। एक औरत होते हुए मैं और आप जिस शरीयत को नाफिज करेंगे, वो अपने आप को अल्लाह और रसूल के बताए हुए तरीक़ों पर चलेंगे। इसी तरह हर फर्द जब अपने हिस्से का काम करता जाएगा तो अल्लाह की रहमत उस कौम पे ज़रूर आएगी। खैर, कहने लगे, खुद ही बताओ क्या बात रह गई है जो तुमने छोड़ दी हो। लेकिन सुनो, अब भी हम तुमको सीने से लगाने के लिए तैयार हैं, दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। दौलत की तमन्ना है तो बताओ, हम तुम्हारे कदमों पर दौलत के ढेर लगा देंगे। शोहरत की तमन्ना है तो आओ, हम तुमको सरदार बना लेंगे। और नऊज़ुबिल्लाह, अगर कहीं कोई दिमागी मरज़ है या जिन का असर है, तो हम अच्छे से अच्छे इलाज का इंतज़ाम करेंगे। इलाज तुम्हारा होगा, पैसा हमारा लगेगा। अब ये जुमले सुनना कोई आसान नहीं होते। क्या आपकी अक़ल और नीयत पर ज़बरदस्त हमला था? आपको बहुत मलाल हुआ। आपने फरमाया, मुझ में इस तरह की कोई शिकायत नहीं, मुझको माल और दौलत की भी तमन्ना नहीं, शोहरत या बादशाहत की भी हवस नहीं, मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, इसी ने मुझे भेजा है ताकि तुमको गफलत से चुका दूं, बुराई का बुरा इंजाम बताऊं और नेकी का नेक इंजाम भी सुना दूं, और चाहो तो तुम्हें रब से मिला दूं। इन बातों का इन पर क्या असर हुआ? जाहिलियत की रग और फड़क उठी, उनमें एक घोल मच गया। अब जो कुछ मुंह में आया वो बोलने लगे, कुछ उल्टे सीधे मुतालबे भी किए। कहने लगे, अगर तुम सचमुच अल्लाह के रसूल हो ना, और इसने तुमको हमारी रहनुमाई के लिए भेजा है, तो इन मुतालबात को पूरा कर दो, फिर हमें यकीन आएगा कि तुम सच्चे हो और इस वक्त हम तुम्हारी बात मानेंगे। किसी ने कहा, अपने रब से को हमारे लिए चश्मा रवा कर दे, चश्मा भी ऐसा कि जमजम से भी मीठा हो, और जैसे शाम और इराक में नहरें बहती हैं, हमारे यहाँ भी बहने लगे। किसी ने कहा, अच्छा भाई तुम नबी हो, तो अपने रब से को वो तुमको बागों और मोहल्लों में रखे और सोने चांदी के बहुत से खजाने दे दे, ताकि ऐश की ज़िंदगी गुजर सके। ये क्या हमारी तरह बाजारों में मारे मारे फिरते हो और रोज़ी के पीछे खून पसीना बहाते हो। किसी ने कहा, ओ यमामा में एक आदमी है रहमान, वही तुमको ये बातें सिखाता है, तो सुन लो, रहमान पर तुम ईमान लाने से रहे, और अगर ऐसा नहीं तो तुम हमारे सामने आसमान पर चढ़ो और वहाँ से एक तहरीर लाओ जिसको हम भी पढ़ लें। ये सारी बातें कुरान की आयतों में जगह जगह आप पढ़ के आए हैं। सूरत बनी इसराइल में तो कसरत से हैं, इसी तरह सूरत अलनाम में भी हैं। किसी ने कहा, अच्छा फरिश्ते अल्लाह की बेटियां, इन्हीं को हम पूजते हैं, अब अगर तुम अल्लाह को और फरिश्तों को हमारे सामने ला खड़ा करो, या आसमान को टुकड़े टुकड़े करके हम पे गिरा दो, तो हम तुम पर ईमान ले आएंगे। ज़रा हम भी तो देखें कि कैसी सजा कैसा अजाब जिसकी ये धमकियां दी जा रही हैं। इतनी बातें सुनकर आपने क्या फरमाया? सुबहान अल्लाह, पाक है मेरा रब, क्या मैं एक पैगम्बर के सिवा और भी कुछ हूँ? कुरान की आयतें नाजिल हो गई कि बाबरकत है वो ज़ात जो अगर चाहे तो तुम्हें इससे भी अच्छी चीज़ें दे दे, चाहे तो ऐसे बाग दे दे जिसके नीचे नहरें रवां हों, और चाहे तो बहुत से महल भी दे दे। खैर, इन लोगों ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारे सामने कितनी ही बातें रखी लेकिन तुमने एक ना सुनी। कई लोग ये भी ताना देंगे, एक बात नहीं सुनते आप हमारी। हमने तुमसे कितनी ख्वाहिशें की लेकिन तुमने सबको ठुकरा दिया। सुन लो, अब हम माजूर हैं और अब हमें हक है कि तुम्हारे साथ जैसा चाहें सलूक करें। याद रखो, हम तुम्हारी जान ही लेकर छोड़ेंगे, अब या तो तुम रहोगे या हम। और फिर उन्होंने आपके कत्ल का फैसला कर लिया, बिल्कुल आखिरी और मुहकम फैसला। और जितने भी मारूफ लोग गुजरे हैं ना, सबसे ज़्यादा कातिलाना हमले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुए। अब सवाल था एक दिल में कि लेकिन अगर मोहम्मद को कत्ल किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अबू तालिब का क्या होगा? इनके कलेजे में आग लग जाएगी, और जहाँ वो बिगड़े सारी आले मुतल्लिब बिगड़ जाएगी, यानी ख़ानदान की आर आ गई। ये तो बहुत बुरा होगा, यही लोग तो कुरैश के सरदार और सरकार हैं, इसके बाद क्या बनेगा? अब ये ख्याल आते इनकी हिम्मत जवाब देने लगी, हौसले पस्त हो गए। हाँ, लेकिन एक तरकीब सूझी उनको, शैतानी तरकीब। क्या? कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अबू तालिब की नज़र से गिर जाए, या कम अज़ कम इनका दिल फीका हो जाए कि इसको हम कत्ल करें, तो वो चुपचाप रहेंगे। चुनाचे उन्होंने बहुत सोचा, बहुत सोचा, कई दिन तक सोचते रहे, और बिलाखिर इन नादानों की अक़ल ने मशवरा दिया कि अबू तालिब के पास अपना एक जवान लेकर जाओ, जवान भी ऐसा कि ताकत और बहादुरी में मशहूर हो और दुनिया हुस्न का भी बादशाह हो। फिर इनसे कहो कि अपने भतीजे को हमें दे दें और इसकी जगह इस जवान को रख लें। पुत्र हट्टा ते नहीं मिलते। कभी बेटे भी को बदलता है कि तुम मेरा बेटा कत्ल कर दो और बदले में अपना ले लो। कितनी ना समझ बात थी। खैर, बड़ी होशियारी के साथ इस तदबीर में कुरैश मगन थे। अबू तालिब के पास आए, साथ एक जवान लेकर आए, वलीद बिन अम्मार नाम का नौजवान था। बोले, अबू तालिब, ये अम्मारा का बेटा वलीद है, कुरैश का सबसे बहादुर और ताकतवर जवान, और फिर दुनियाए हुसन का भी बादशाह। आज से ये आपका बेटा है, हर मामले में सही मशवरा देगा और हर काम में आपका हाथ भी बटाएगा। तो इसको अब आप अपने पास रखिए और इसके बदले में अपने भतीजे को हमें दे दीजिए कि इसका किस्सा ही पाक कर दें। कहने सुनने में भी ये बात कितनी अजीब लग रही है। ख्वामखा के लिए इसने एक फितना उठा रखकर सारी कौम को तितर बितर कर दिया है, और फिर आपको तो इससे भी अच्छा आदमी मिल रहा है, यानी नऊज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छा बंदा आपको मिल रहा है। अब कौम के समझदार लोगों की ज़ुबान से ऐसी ना समझी की बात, इतनी अकल से हटी हुई अजीबो गरीब बात, अबू तालिब तो हक्का बक्का रह गए। कुछ देर तो वो हैरत से इनका मुंह देखते रहे, फिर बोले, ए अकल के मारे दीवानो, कितना बुरा सौदा कर रहे हो तुम। तुम्हारा बेटा तो मैं अपने पास रख कर मोटा करूँ और अपने कलेजे को तुम्हें दे दूँ ताकि तुम उसकी तिक्का बोटी करो। खुदा की कसम, ये तो क्यामत तक ना होगा। अब ये बात बिल्कुल सही थी इनकी। खैर, अदी का बेटा मोतम बोला कि ये भी कुरैश के सरदारों में था। खुदा की कसम, अबू तालिब, कौम ने बहुत इंसाफ किया और लाख कोशिश की कि नागवारी की कोई बात ना हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप इनकी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है। अबू तालिब ने कहा, अब्बा खुदा, मेरे साथ ज़रा भी इंसाफ नहीं किया गया। असल में तो तुमने मुझे रुसवा ही करने का फ़ैसला कर लिया कि लोगों को मेरे खिलाफ भड़काते ही रहोगे, तो जाओ जो जी में आए कर डालो। लोगों ने कहा, हमने ज़रा भी नाइंसाफ़ी नहीं की, ना आपके साथ ना भतीजे के साथ की। ये जुमला लिखी, हर नाइंसाफ़ी करने वाला ये कहता मैं इंसाफ कर रहा हूँ, जुल्म करने वाला कभी नहीं मानता मैं जुल्म कर रहा हूँ, गलत बात की साइड लेने वाला कभी नहीं मानता कि मैं साइड ले रहा हूँ, वरना मान जाए तो सब छोड़ भी तो देना। खैर, हमने बारहा कहा कि भतीजे को समझाइए और इसको इसकी हरकतों से रोकिए, लेकिन आपने कभी नहीं रोका, तो सुन लीजिए। अब अगर इसने देवताओं का नाम लिया या बुजुर्गों को कुछ कहा या हमारी अक्ल और समझ पर कुछ हमला किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब सिर्फ दो ही सूरतें हैं, या तो समझा बुझा कर इनको खामोश करा दें, वरना हम लोग जंग करेंगे, इससे भी करेंगे और आपसे भी करेंगे, और हर उस शख्स से करेंगे जो आप दोनों का साथ देगा। अब या तो आप रहेंगे या हम। देखिए, खुला ऐलान था जंग का, कबायली सिस्टम में ये बात बहुत मैटर करती थी। खैर, ये बातें कहकर ये लोग चले गए। मामला चूंकि सख्त और मौका बड़ा नाजुक था, इसलिए अबू तालिब को रंज भी हुआ और उनको फिक्र थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को खतरा है। जो आपके सामने आकर इतनी धमकियां दे गए हैं, तो कहीं भी अकेले में पकड़ के आपके साथ कुछ भी कर दें तो अबू तालिब क्या करते। तो लिहाजा उन्होंने अपनी कौम और ख़ानदान के खुले चैलेंज को सुना, जिससे उनका जिगर छलनी हुआ, तो अपने बेटे को भतीजे को बुलाया और उनसे बात करनी चाहिए। कौम की दुश्मनी मोल ले नहीं सकते, भतीजे को बेसहारा छोड़ नहीं सकते। एक अजीब कशमकश थी और ये बहुत बड़ी सख्त आजमाइश थी। अबू तालिब का सर झुक गया और वो सोचने लगे, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, अपने आप से पूछ रहे, मैं क्या करूँ। अबू तालिब, तुम बताओ अब क्या करोगे, तुम्हारा क्या फ़ैसला है? क्या भतीजे को जालिमों का लुकमा तर बना दोगे या इसकी हिमायत में जान लड़ाओगे? एक फैसलाकुन घड़ी थी और दुनिया को इंतज़ार था कि देखें क्या होता है। बिलाखिर अबू तालिब ने तय किया कि आपको बुलाएं और किसी तरह दावत देने से रोकें, क्योंकि यही दावत तो कौम की दावत का सबब थी। इसी ने कुरैश की वहदत को पारा पारा कर दिया था और इसी ने इनकी शान और शौकत का महल ढाकर रख दिया था। अल्लाह के नबी सल्लम चचा के पास गए, चचा ने सारा किस्सा सुनाया और कुरैश का चैलेंज भी बता दिया। फिर बोले, चचा की जान, खुदारा मुझ पर और अपनी जान पर रहम करो, मुझ पर इतना बोझ ना डालो कि मैं सहार ना सकूं। ज़रा इंसानी जज्बात की इन बारीकियों को फील तो कीजिए, महसूस कीजिए। अब अबू तालिब मुंतज़र थे कि देखे क्या होता है। एक फैसला कुन घड़ी आ रही थी, आप सरापा इंतज़ार थे। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की पुकार से रुख फेर लेते हैं और चचा की पुकार और ख़ानदान की बात पे लब्बैक कहते हैं? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक का साथ छोड़ देते हैं और दीन इस्लाम से मुंह मोड़ लेते हैं? क्या अब दुनिया नूरे ईमान से जगमगाएगी या कुफर की तारीकियों में ही खोई रहेगी? एक दोराहा था। और फिर तौकुफ़ के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, जिन्होंने अपने दर्द मन चचा की बातें सुन ली। चचा पूछ रहे हैं, बताओ तुम्हारा क्या फैसला है, बोलो अब क्या इरादा है। और आपने फिर वही फैसला किया जो फैसला आपके रब का था। आपने वही बात पसंद की जिसमें खुद अल्लाह की पसंद थी। पूरे अज़्म और हिम्मत से फरमाया, चचा खुदा की कसम, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ में सूरज रख दें और बाएं हाथ में चांद और कहें कि मैं ये काम छोड़ दूं, तो ये नामुमकिन है। या तो ये काम पूरा होगा या मेरी जान भी इसी राह में काम आएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। उम्मत मुस्लिमा के लिए एक लम्हा फिक्रिया है अल्लाह के नबी के ये जुमले। आपका ये अमल आज तो इससे बहुत पीछे ही लोग वद्दू लौ तुदख़िनू फ़युदख़िनून के मुताबिक ढीले पड़ जाते हैं। नहीं, ये अल्लाह को सब पता है, अल्लाह को मेरा पता है। अल्लाह अकबर। ये हक की ताकत और ईमान की अजमत, ये बातिन की कुव्वत और रूह की अजमत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उस वक़्त सिर्फ मोहम्मद कहलाते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हक के साथ थे। हक ही के लिए आपका जीना था और हक के लिए आपका मरना था। अब चचा ने भतीजे को बहुत ही हैरत और ताज्जुब से देखा। आपके अज़म और हौसले का इन पर इतना बड़ा असर हुआ कि वे गहरी सोच में डूब गए। मकसद की ये धुन और काम की लगन, इस राह में क्या मुसीबतें आएंगी इसकी कोई परवाह ही नहीं है, कौम क्या सलूक करेगी इसकी कोई फिक्र ही नहीं है। ये होते हैं हक वाले। आप भी अपने आप को देखा करें, कितना दमखम है आपके हक के दावे में। खैर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा के पास से उठे और चल दिए। रोकना बहुत चाहा लेकिन आंखें नम हो ही गईं, दिल में एक हलचल मच गई। अब क्या होगा, अब तो चचा की भी आंखें बदल गईं। इनके अज़्म और हिम्मत ने भी जवाब दे दिया, इन्होंने भी अब मुझको बेसहारा छोड़ देना गवारा कर लिया। आह, वो चचा जिसने सदा कलेजे से लगाए रखा, आज मुसीबतों के तूफान में इसने तनहा छोड़ दिया। लेकिन अभी आप कुछ ही दूर गए थे कि चचा ने आवाज़ दी, भतीजे ज़रा सुनना। देखिए, हम सोचते हैं कि नबी जो थे ना, उनके सीने में दिल नहीं था, पत्थर था। नहीं, इंसानी जज्बात सबके। आज आप छोटी सी बात सुन के रो पड़े तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बातों पे कुछ ना सोचे। इंसान का तो हुस्न ही जज्बात में। जाते जाते रुके, चचा के पास वापस आए। चचा ने कहा, भतीजे अब जो दिल चाहे करो, जो चाहो कहो, जब तक जान में जान है मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये थी मोहब्बत, और अल्लाह ने उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दी, भतीजा समझ के ही सही। चचा की ज़ुबान से आपने ये बातें सुनी तो खुशी से चेहरा मुबारक कुंदन की तरह दमकने लगा और सीने में एक नया हौसला और वलवला मौजे मारने लगा। मुशरिकों के चेहरों पे बल आता है, आया करे, इनकी तेवरी चढ़ती है तो चढ़ा करे। हम तो इस राह में जान लड़ाते रहेंगे और तारीख दुनिया में नूरे इस्लाम फैला के रहेंगे। ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़्म और ये था आपका हौसला। और अब चचा भतीजे की मदद के लिए कमर कसने लगे और उसके लिए ख़ानदान को भी तैयार करने का फ़ैसला कर लिया। चटपट सब को जमा किया और कहा, भाइयों सब मोहम्मद के पीछे पड़े हुए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बिल्कुल उसकी जान लेने पे तुल गए, तो मैं चाहता हूँ कि इनकी ये तमन्ना कभी पूरी ना हो और हम सब मिलकर उसका साथ दें। खैर, ये सुनकर सब ने अबू तालिब की हिम्मत बढ़ाई, यानी अबू तालिब ने अपने ख़ानदान के लोगों से मदद तलब कर ली और मदद का वादा लिया। बस एक अबू लहाब था जिसको भतीजे पे ज़रा भी तरस ना आया, और उसने जीते जी आपकी दुश्मनी का बेड़ा उठाया और ऐलान कर दिया कि मैं कुरैश के साथ हूँ और उन्हीं में मिलकर काम करूँगा। यानी अल्लाह की तरफ से कुछ रिश्ते आजमाइशी होते हैं। खैर, अब कुरैश पूरे ज़ोरों शोर से आपकी मुखालफत पर तुल गए और दावत को नाकाम बनाने के लिए नित नई चालें चलने लगे। उन्होंने आप पर वो जुल्म ढाए कि खुदा की पनाह, ज़मीन लरज़ उठी और आसमान थर आ गए, लेकिन इन जालिमों को ज़रा भी रहम ना आया। फिर ये चीज़ सिर्फ आप तक महदूद न थी, साथियों को भी उन्होंने अपनी बेरहमियों का निशाना बनाया और जुल्म और सितम की चक्की में पीस कर रख दिया। लेकिन प्यारे नबी, हमारे नबी और आपके साथी सब कुछ सहते रहे। ये मोहम्मद अरबी की ज़िंदगी का एक ऐसा दौर था कि जिसके बाद फिर एक तूफ़ानी कशमकश शुरू होने वाली थी। इसको अगले सेशन में लेंगे, लेकिन आपको यकीनन इन सारी बातों से ये तो यकीन आ ही जा रहा है कि अल्लाह के नबी ने इतने आराम से ये दीन नहीं फैलाया। ये किताब जिसको हम जल्दी जल्दी पढ़ना चाहते हैं, जिसको ख़त्म करना चाहते हैं, जिसके बारे में हमारे जहनों में कितने शकों को शुभात आज लोगों ने डाल दिए, आज शहवात इतनी फैली कि शरीयत बोझ लगने लगी और गले का फंदा लगने लगी। आइए ज़रा अब उस किताब की आयात को लेकर साथ देखते हैं कि आप कैसे थे, और ख़ास तौर पर निफाज़े शरीयत में आपने क्या कुर्बानियाँ दी। और अल्लाह ताला आपको मुझे भी ईमान दे, इस्लाम दे, और सबसे बड़ी बात हक़ के लिए जुरत अता फरमाए। शुरू करते हैं आयात को। सूरत हामीम सजदा की आयत नंबर 47 से पारा शुरू होता है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इलैहि युरद्दु अल-मुस्सा वमा तख़रुजु मिन समरातिन मिन अक्मामिहा वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तदउ इल्ला बिइल्मिही वयौमा युनादीहिम अयना शुरकाई قالوا آذناك ما منا من شهيد। क़यामत का इल्म अल्लाह ही की तरफ लौटाया जाता है। इतराज़ करते थे ना, क़यामत कैसे आएगी, कैसे कब्रों से लोग निकलेंगे, तो ज़रा नोट कीजिएगा, तर्जमे में से कायनात की निशानियों से दिखाया जा रहा है। और जो जो फल अपने शगुफ़ों से निकलते हैं, और जो मादा हमल से होती है और वो बच्चे को जनती है, और जो बच्चे वो जनती है, सब का इल्म इसे है। क्या पता चला, जो माँ के पेट से बच्चे को निकाल सकता, जो शगुफों से फल निकाल सकता, क्या कब्रों से इंसानों को निकाल नहीं सकता? और उस दिन क्या होगा, वह यौमा युनादीहिम अयना शुरकाई, और जिस दिन इन मुशरिकों को बुलाकर दरिया फरमाएगा मेरे शरीक कहाँ हैं, वो जवाब देंगे कि हमने तो तुझे कह सुनाया कि हम में से तो कोई इसका गवाह नहीं, और ये जिन जिन की परस्तिश इससे पहले करते थे वो इनकी निगाह से गुम हो गए और उन्होंने समझ लिया कि अब इनके लिए कोई बचाव नहीं। भलाई के मांगने से इंसान थकता नहीं, और अगर इससे कोई तकलीफ़ पहुंच जाए तो मायूस और नाउम्मीद हो जाता है, और जो मुसीबत उसे पहुंच चुकी है इसके बाद अगर हम इसे किसी रहमत का मज़ा चखाएं तो वो कह उठता है कि इसका तो मैं हकदार ही था, और मैं तो ख्याल नहीं कर सकता कि क़यामत कायम होगी, और अगर मैं अपने रब के पास वापस किया भी गया तो भी यकीनन मेरे लिए इसके पास भी बेहतरी है। यकीनन हम इन मुनकरीन को इनके अमाल से खबरदार करेंगे और इन्हें सख्त अजाब का मज़ा चखाएंगे। व इदा नमना लल इंसान आरादा, और जब हम इंसान पर अपना इनाम करते हैं तो वो मुंह फेर लेता है और किनारा कश हो जाता है, और जब उसे कोई मुसीबत पड़ती है तो वो बड़ी लंबी चौड़ी दुआएं करने वाला बन जाता है। आप कह दीजिए कि भला ये तो बताओ, अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से आया हो फिर तुमने इसे ना माना, बस इससे बढ़कर बेकवा और कौन होगा जो मुखालफत में हक से दूर चला जाए। सनुरी हिमायाती नफिल आफा की वफी अनफुसिहिम, अन करीब हम इन्हें अपनी निशानियाँ आफाक में भी दिखाएंगे, यानी आलम में दिखाएंगे, यूनिवर्स में, और ख़ुद इनकी अपनी ज़ात में भी, यहाँ तक कि इन पर खुल जाए कि हक यही है कि आपके रब का हर चीज़ से वाकिफ आगाह होना काफ़ी नहीं। अला इन्नहुम फी मिर्यत मिन लिक़ाई रब्बिहिम, यकीन जानो ये लोग अपने रब के रूबरू जाने से शक में हैं। याद रखो कि अल्लाह ताला हर चीज़ का अहाता किए हुए है। क्या पता चला कि क़यामत के आने के बारे में इतने शकों को शुबहात थे कि इतनी शद्दो मत से उसका इनकार करते, और अल्लाह ताला दलाइल दे रहे हैं। आइए देखिए आयत 47 से तदब्बुर और अमल के नुक्ते। अल्लाह ताला से इसके कुशादा रिस्क में से मांगिए और इल्मे नाफे की दुआ कीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका इल्मन नाफिया। आमाले सालेहात कामयाबी की शराइत में से एक है, लिहाजा इल्मे दीन का असर आमाल में नज़र आना चाहिए। अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो आपके गमों को दूर कर दे, क्योंकि उसके सिवा कोई हस्ती नहीं है जो आपके गम दूर कर सके। रहनुमाई के नुक्ते। क़यामत के दिन हर गैर अल्लाह को पुकारने वाला इससे जुदा हो जाएगा जिसे वो दुनिया में पुकारता था। इंसान अपनी अक्ल और तसव्वुरात तक में भी कमज़ोर है, जिस्म तो बहुत ही कमज़ोर है, और ईमान के बगैर इंसान गुमराह तरीन मखलूक है। ईमान आपको मुझे बचाएगा इंशाल्लाह। गौर व फिक्र की बातें। और अब देखिए सूरत का अख्तिताम क्या खूबसूरत नुक्तों पे हो रहा है। क्या मोमिन परेशानियों में सब्र करता है और नेमतों में शुक्र अदा करता है। कायनात और नफ्स की निशानियाँ कुरान के हक होने की दलील है। क़यामत की तस्दीक करके भी शक में रहने वाला कम अकल है, यानी कहते तो हैं लेकिन करते नहीं। तो यहाँ एक जुमला लिख लीजिए, जिम बना दें, कि इल्मे आखरत और चीज़ है और फ़िक्रे आखरत कुछ और चीज़ है। लोग इल्मे आखरत को फ़िक्रे आखरत समझते हैं, हालांकि इससे अमल में कोई तब्दीली नहीं आती। इसी तरह जिस तरह चीज़ें मुकम्मल दिखाई देने से कबल तकमील के मराहल से गुज़रती हैं, इसी तरह इंसानों के नामे आमाल भी तकमील के मराहल से गुज़र रहे हैं जब तक कि क़यामत नहीं आ जाती। यहाँ फलों का निकलना और माँ के पेट से बच्चे का निकलना हमें यही बता रहा है कि तुम भी कदम कदम, लहजा लहजा अपने नामे अमाल की तरफ जा रहे हो जिसको तुम अपने हाथों से लिख रहे हो। और इसमें आप देखिए बार बार इल्म की बात आई, पीछे भी थी यहाँ भी है, तो लिख लीजिए अमाले सालेहात कामयाबी की शराइत में से एक है। लिहाजा इल्म दीन का असर अमाल में नज़र आना चाहिए। बातों से क्या होता है, असल चीज़ तो अमल है। तो खूबसूरत सूरत पूरी हुई।